हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक नंबर 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु एंड गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला सिकंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 19। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं। न वै जनो जातु कथञ्चना व्रजे, मुकुन्द सेव्यं यवदंग संश्रितं, स्मरन् मुकुन्दां ग्रयोपभूहनम्। पुनः విహాతుమిచ్చేన రస గ్రహోజన సవైజనో జాతు కథంచన వ్రజేన్ ముకుంద సేవ్యం యవదంగ సంసితం స్మరన్ ముకుందాం గ్రయోపగుహనం పునః విహాతుమిచ్చేన రస గ్రహోజన సవై జనో జాతు కథం జనవ్రజీ ముకుంద సేవ్యన్ యవదంగ సంశ్రితం స్మరన్ ముకుంద గ్రహయోపగుహనం పునః విహాతుమిచ్చేన రస గ్రహోజన నవై జనో జాతు కథం జనవ్రజే ముకుంద సేవ్యన్ యవదంగ సంశ్రితం స్మరన్ ముకుంద గ్రహయోపగుహనం పునః విహాతుమిచ్చేన రస గ్రహోజన నవై జనో జాతు కథం జనవ్రజే ముకుంద సేవ్యన్ యవదంగ సంశ్రితం స్మరన్ ముకుందాం గ్రహయోపగుహనం పునః విహాతుమిచ్చేన రస గ్రహోజన శబ్దకాత్ న వై జన న మతలబ్ కభి నహి వై మన నిశ్చయ హి జన మతలబ్ వ్యక్తి जातु कथम चना व्रजे जातु कथम चना जातु मतलब किसी भी समय कथम चना किसी भी तरह से आव्रजित का मतलब होता है नहीं आता कहा मुकुंद सेवियन यवदंग संस्मृतम मुकुंद सेवियन का मतलब होता है भगवान का भक्त अनवद का मतलब होता है अन्य की तरह अंग हे प्रिय संस्कृति भौतिक जगत यानी जो भगवान का भक्त होता है वो भौतिक जगत में अन्यों की तरह कभी भी लिप्त नहीं हो सकता। स्मरण मुकुंदांग ग्रह यूप गोहनम स्मरणम अतः स्मरण करते हुए मुकुंदांग मुकुंद यानी भगवान अंग्री यानी भगवान के चरण कमल भगवान के जो अंग्री उनके चरण कमल है उपगुहनम यम घूमते हुए पुनः फिर से विहातुम त्यागने की इच्छा विहातुम इच्छे न रस ग्रहोजन त्यागने की इच्छा इच्छित इच्छा करता है न मन कभी नहीं रस ग्रह जिसने रस आस्वादन कर लिया है जन यानी जो व्यक्ति जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर लिया है फिर उससे चाहे कितना भी प्रलोभन मिल जाए वो भटक सकता है मतलब अपनी राह से कभी कभी परंतु वो कभी भी भौतिकता में वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अनुवाद हे प्रिय व्यास यद्यपि भागवत भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है लेकिन उसे अन्यों यानी सकाम कर्मियों आदि की तरह भाव चक्र में नहीं आना पड़ता क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझा रहे हैं कि भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि वास्तविक आनंद, वास्तविक रस, वास्तविक संतोष केवल भगवान के चरणों में है, तो उसे भौतिक संसार में वो आनंद आता नहीं है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुछ संगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रतारित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, किंतु क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लड़का पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने योग्य पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, उसी प्रकार एक नवदीक्षित भक्त भी मूर्खतावश भक्ति के बदले में कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसा मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से मोहग्रस्त भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंब भी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत होता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि ऐसे च्युत भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैष्णव परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रतारित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में प्राप्त हो जाती है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये च्युत भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय समझता है और भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्त आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनसिक हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण रखता है और उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, भले ही तीनों लोकों का ऐश्वर्य उसे क्यों न मिल जाए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। हम अत्यंत ही सुंदर उपदेश पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण के पंचम पहले स्कंद के पंचम अध्याय में। नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया जा रहा है, जिसमें अभी भगवान की भक्ति की विशेषता के विषय में बता रहे हैं, जिसे हमने श्लोक नंबर 17 में पढ़ा, त्यक्त्वा स्वधर्मं चराम भुजं हरे। अगर वो अपना स्वधर्म सही नहीं कर रहा है और भगवान हरि के चरण कमलों की शरण दे रहा है, भजन न पक्को थ पते तटयदि, और वो भगवान हरि के चरण कमलों की भक्ति भी सही तरह से नहीं कर पा रहा है और पतित हो जाता है, पतन हो जाता है उसका, यत्र क्वा भद्रम अबूद समुष्यकिम, तो उसकी कोई हानि नहीं हो रही है, क्योंकि भक्ति जो उसने की है वो चाहे कितनी ही अल्प क्यों न हो, वो कभी क्षीण नहीं होती और उसकी महाभैष्य रक्षा करती है। तो और आगे कहते को वाट आप तो भजताम स्वधर्मतः, लेकिन यदि कोई अपने स्वधर्म को अत्यंत ही सुंदर ढंग से कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके जीवन का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन की वास्तविक पूर्णता को समझा है, ना जाना है और ना ही प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। और आगे श्लोक नंबर 18 में बताया, तस्यैव हेतो प्रियते न कोवितो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यतः, यानी कि फिर जो वाकई में विधु होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो एक ऐसी वस्तु की खोज करते हैं जो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक समस्त लोकों में प्राप्त नहीं होती, और तल्लभ्यते दुख वदन यत् सुखम, और बाकी जो संसार के भौतिक सुख हैं वो तो दुखों की तरह हमें स्वतः मिल जाएंगे, उनके लिए अत्यधिक परिश्रम करने की या अधिक चेष्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं, कर्तव्य करो, लेकिन भौतिक सुख और भौतिक दुख जिस तरह खुद को मिल रहे हैं उस तरह सुख भी मिलेंगे। किस तरह मिलेंगे? कालेन सर्वत्र गलेन रहमसा, और समय के साथ साथ आपको आपके नसीब का सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर कोई बुद्धिमान है तो प्रयत्न करता है उस वस्तु के लिए जो वाकई में प्रेशियस है, जो वाकई में प्राप्त करना बहुत कठिन है और जो केवल इस मनुष्य जन्म में ही प्राप्त की जा सकती, अर्थात भगवान की भक्ति। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, किसी ने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी वो भौतिकता के किसी कारण से वो भौतिकता की ओर बहुत बहुत आकर्षित हो जाता है और वो फिर से भौतिक जीवन गुजारना शुरू करता है, तो क्या उसकी स्थिति उसी जो कर्मी लोग होते हैं, जो सकाम कर्मी आदि होते हैं, उनके तरह ही उसका उसका जीवन भी होगा? उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं नारद मुनि, नवय जनो जातु कथन चनाव्रजी मुकुंद सेवियन अन्यवद अंग संस्मृतम। अन्यवद मतलब दूसरों की तरह, जो दूसरे जीव हैं, जो सत्काम कर्मी हैं, उनकी तरह भौतिक जगत में वो आनंद नहीं ले रहा, भले वो गिर जाता है लेकिन फिर भी दूसरों की तरह उसकी दशा नहीं होती है। भले ही स्मरण मुकुंदांग्रह युप गुहनम पुनः, उपगुहन मतलब घूमते हुए पुनः फिर से वो क्या करेगा, भगवान की सेवा में आ जाएगा, भले वो एक दफा से भगवान की सेवा से च्युत होकर भौतिक जगत में आकर्षित हो गया है, लेकिन भगवान की ऐसी ऐसा है ना, क्योंकि भगवान की शरण में एक बार आ गया तो भगवान के संरक्षक में आ गया है, तो भगवान अब उसे कभी किधर जाने नहीं देंगे, भले ही वो बहुत भौतिक इच्छाओं की ओर आकर्षित हो भी जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान के संरक्षण में ही रहेगा। विहातम इच्छेन रस ग्रहोजन, और क्योंकि उसने एक बार भगवान की भक्ति का रसास्वादन कर लिया है ना, तो फिर उसे भौतिक वस्तुओं में अब आनंद आएगा नहीं, भगवान उसे आनंद लेने देंगे नहीं, भले भौतिक संगति के कारण, कुसंगति के कारण थोड़ा वो भटक जाएगा, नीचे गिरेगा, लेकिन फिर से भगवान उसे अपना हाथ देकर उसे ऊपर कर लेंगे और भौतिक आसक्ति से छुड़ा देंगे। मतलब उसे पुनः भाव चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार उसने भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय ले लिया है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति समझाते हैं कि भले ही भक्त अपनी किसी इच्छा के कारण उसका पतन हो जाता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी भी समान पतित नहीं समझना चाहिए। जैसे दूसरे कर्मी होते हैं उनकी तरह से पतित उनको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कर्मी जो होते हैं वो अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं, है ना। कर्मी जो होते हैं वो क्यों इस भौतिक जगत में पतित हुए हैं, जैसे किसी को पशु योनि मिली है या किसी को राक्षस योनि मिली है या कुछ भी, वो अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन यदि भक्त को मिलती है तो भक्त को क्या हुआ है, भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण, क्योंकि भगवान उसे सुधारना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, महाराजा इंद्रद्युम्न भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनको ऋषि ने श्राप दिया कि वो क्या बन जाए, गजेंद्र, हाथी बन। हालांकि महाराजा हैं, भक्त हैं वो, अब क्या हुआ था उसके बाद वो हाथी बन गए। तो ये तो निम्न योनि है, पशु योनि है, परंतु इस योनि को प्राप्त करने के बाद भी वो क्या, भगवान की कृपा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। फिर क्या, भगवान को पुनः याद करता है वो, जब उसको ये कोई उसको उसके कर्मों के अनुसार नहीं मिल रहा होता है, बल्कि भगवान उसे सुधारने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। जैसे अब महाराजा भरत, उसने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में आकर तपस्या करने लगे, लेकिन आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गई हिरण के द्वारा। तो फिर अब हिरण में आसक्ति हो गई, हिरण का जन्म ले लिया, यानी इतना महान भक्त जो कि समस्त सृष्टि का राजा था और उसने अपने समग्र राज्य को एक क्षण में उसकी आसक्ति को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी भौतिक आसक्ति को खत्म नहीं कर सका, तो भगवान ने उसे दोबारा से हिरण का जन्म दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पतन, जिस तरह दूसरे हिरण है अब वो ग्रेजुअली हिरण के बाद दूसरा जन्म लेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, अब जड़ है, इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फिर जाके कहीं मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर जाके है ना वो भगवान की भक्ति करे, नहीं ऐसा नहीं है। वो प्रताड़ित हुए हैं, वो सुधरने के लिए उनको पनिशमेंट दी गई है बहुत ही कम समय के लिए, और भगवान पुनः उन्हें अपने भक्ति का चांस देंगे और फिर उनको याद रहता है। ऐसा नहीं है कि आप देखो गजेंद्र है, उन्हें पूरा याद था, वो पूरी स्तुति जो कि उन्होंने पहले याद की थी पहले जन्म ने, वो भूला नहीं था। उसी तरह भले ही महाराजा भरत को भरत हिरण बना दिया गया था, लेकिन वो भूले नहीं थे कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने जड़ भरत का जन्म लिया, उसके बाद भी उन्हें याद था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब मुझे सांसारिक भौतिक आसक्ति किंचन मात्र भी नहीं अपनानी है, केवल भगवान का भजन करना है, क्योंकि जरा सी भी आसक्ति यदि भौतिक वस्तुओं के पीछे या भौतिक किसी व्यक्ति के अंदर जरा सी भी आसक्ति रह जाएगी, तो जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इसको खत्म करने के लिए भगवान प्रताड़ित करते हैं, उसको सिखाते हैं, लेकिन उसका ये पतन भौतिक कर्मियों के जैसा नहीं होता, बल्कि बस एक जिस तरह से राजा का बेटा, बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि अगर कोई राजा का बेटा कोई गलती करता है और राजा उसे अपने राज्य से निकाले, निकल जाओ तुम मेरे राज्य से, तुम इतने मतलब कोई अपराध करता है तो अपने बेटे को निकाल देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे दूसरे गरीब हैं दरिद्र हैं संसार में उसी की तरह ये भी है, नहीं। राजा सदैव राजा के संरक्षण में होगा। अगर उसने राजा ने अपने बेटे को अपने राज्य से निकाल भी दिया है ना, तो भी सदैव उसका ख्याल रखेगा
और दूसरे लोग तो वो तो दरिद्र हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसी तरह से भगवान का भक्त अगर किसी तरह से भक्ति से च्युत हो भी जाता है तो सदैव भगवान के संरक्षण में होता है, और भगवान सदैव कोई ना कोई ऐसी योजना बनाते रहते हैं कि किस तरह से मैं इसे पुनः अपनी भक्ति में लेकर आऊं। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कभी कभी तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी दुखमय स्थिति उनके जीवन में, उन भक्तों के जीवन में जो कि अपने भक्ति को छोड़कर भौतिक जीवन को ग्रहण करते हैं, उनमें इतनी दुखमय स्थिति में उनको डाल देते हैं, उनका संपूर्ण भौतिक साज सामान, उनके कुटुंबियों से उनको अलग कर देते हैं और उनका भौतिक यश सब कुछ उनका उनसे ले लेते हैं। और फिर उसको याद आता है कि क्या इस संसार में मैंने पाया, कुछ भी नहीं, दुखी दुख है, तो फिर वो सब चीज से आसक्ति उसकी समाप्त हो जाती है और वो पुनः सही ढंग से भक्ति करने लगता है। श्री प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का एक यहाँ पर श्लोक बताया है जिसमें भगवान ने बताया श्रीमान शुचिमतान गए है योगो भ्रष्टो भी जाए थे, कि अगर भक्ति में कोई च्युत हो जाता है तो फिर मतलब वो पूरी भक्ति नहीं कर पाता है तो फिर दूसरा जन्म उसका कहाँ होता है, बहुत ज्यादा अमीर लोगों में या जो बहुत ज्यादा भक्त है उनको घर में उसका जन्म होता है जहां पर उसको सुविधा मिलती है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि भले ही उसका किसी का जन्म अमीर घर में होता है, भले ही सुविधा भक्ति वाले परिवार में होता है, लेकिन वो इतनी बड़ी कृपा नहीं है भगवान की, क्योंकि अमीर घर में पैदा होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो भक्ति करे, है ना। अगर अमीर घर में पैदा होगा तो फिर और भी उसको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, वो पुरानी भक्ति को भूल जाएगा, वो भक्ति करेगा नहीं। लेकिन इस तरह से अगर भगवान उसको मतलब जैसे अगर किसी भक्त के घर में भी उसको जन्म मिल जाता है, लेकिन क्योंकि वहां पर इतनी सुविधाएं होती हैं और वो देखता है कि मुझे ना इसमें आनंद नहीं आ रहा है और दूसरों को आनंद भौतिक आनंद भोगता हुआ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये भक्ति वाली लाइफ शार्मलेस है, तो वो भक्ति में इतना ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता। लेकिन यदि किसी को भौतिक कष्ट मिलते हैं, भगवान अगर उस भक्त को असहाय कर देते हैं, संसार में उसका कोई नहीं होता है, उसको तनिक भी आनंद प्राप्त नहीं होता है संसार में, तो फिर वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो अपने को चारों ओर से असहाय समझकर भगवान के चरण कमलों की ओर लौट आता है और फिर उसकी आसक्ति भगवान की ओर अधिक तीव्र होती है। मतलब इस श्लोक में नारद मुनि बताना चाहते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ यंगस्टर्स आते हैं भक्ति में, बहुत उत्साह के साथ भक्ति करते हैं, भक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन 2-3 महीनों के बाद या 1-2 साल के बाद ऐसा होता है उनको ऐसा लगता है कि ये खामखा में भक्ति में आया जिसके कारण मेरी भौतिक लाइफ को बहुत मिस करने लगता है कि कितना आनंद दोस्तों के साथ घूमता था, इतना मजा आता था, जीन्स पहनता था, टी शर्ट पहनता था, लड़कियों के साथ में कितना फ्लर्ट करता था, तो उसको ऐसा लगता है कि खामखा मैंने इतना सब त्यागा और भक्ति में भी अब मजा नहीं आता। शुरू में उत्साह होता है क्योंकि नई चीज जब वो ग्रहण करता है फिर बाद में उसको बोरिंग लगने लगता है और फिर उसको आनंद नहीं आता है। क्यों आनंद नहीं आता है? क्योंकि अभी तक उसको भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल 100% घृणा नहीं हुई है, छोड़ तो दिया लेकिन फिर भी वहां पर भी उसको आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसमें भी आनंद है। वास्तव में भक्तों, शास्त्र कहता है जब तक कोई हृदय से इस बात के लिए कन्विंस नहीं हो जाता है कि समस्त भौतिक ख्वाहिशें, जो भी भौतिक सुख है, जो भी भौतिक ख्वाहिशें हैं, वो केवल भौतिक शरीर के कारण है, और क्योंकि शरीर जो है वो स्वयं ही दुख का कारण है, और जितना जितना हम उसको, शरीर की इच्छाओं को, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त प्राप्त करते जाएंगे उतना उतना हमें कष्ट मिलता जाएगा। जब तक इन भौतिक वस्तुओं को भौतिक आनंद को हम कष्टप्रद नहीं समझेंगे तब तक हृदय के अंदर एक सूक्ष्म अभिलाषा बनी रहेगी कि इन भौतिक वस्तुओं के द्वारा या भौतिक व्यक्तियों के द्वारा आनंद प्राप्त करूं। तो हृदय में जब तक इस बात को रियलाइज नहीं कर लेता व्यक्ति कि ये सब भौतिक वस्तुएं और व्यक्ति मेरे दुख का कारण बने, जैसे भगवान ने 5.25 में भगवत गीता में बताया कि प्राग शरीर इस संसार इस शरीर के द्वारा तुम्हारा प्राप्त होने वाला हर सुख तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तो जब तक ये चीज को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते तब तक भक्ति का पूरा आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर अज्ञान के कारण, क्योंकि उसको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, वो फिर से मेटेरियल लाइफ में सोचते हैं कि एंजॉय आएगा, वो इस तरह से भक्ति की लाइफ को भी पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। फिर वो भौतिक लाइफ अगर वापस से शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि भक्ति एक दफा टेस्ट की है उसने, तो अब उसको भौतिक लाइफ में भी संपूर्ण आनंद नहीं आने वाला। भले वो हर रोज कार्य करे जो कि भौतिक लोग कर रहे हैं, लेकिन उसे आनंद आने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो भगवान के संरक्षण में। भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान यहाँ तक कहते हैं कि अपिचे सुदुराचारो, अगर कोई दुराचारी भी होगा लेकिन अगर मेरी भक्ति में आ गया है तो उसे कभी भी दुराचारी नहीं समझना चाहिए। अब भक्ति से आकर वो वापस से च्युत हो गया तो भी आदर उसका करना चाहिए, क्योंकि वो भक्त था, वो वापस से भक्ति में आ जाएगा, लेकिन भगवान ने उसको कुछ सबक सिखाने के लिए, वो भगवान जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वापस से भगवान की योजना से वो भक्ति में आ जाएगा। भागवतम बताती है कि संसार में केवल दो टाइप के व्यक्ति जो है वो खुश हो सकते हैं, सिर्फ दो तरह के लोग हैं जो पूरा आनंद ले सकते हैं। एक तो पागल व्यक्ति, जो बिल्कुल बहुत जैसे पागल हो ना, वो भले गंदी जगह पे रहता है, गंदे कपड़े पहन रहा है, गंदा उसको खाने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो मजे से हंस रहा है, खुश हो रहा है। उसको कुछ पता ही नहीं है कि मिजरी का क्या मतलब है, है ना, दुख का क्या मतलब है। तो दुखी होता नहीं है क्योंकि उससे उसके माइंड में दुख का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो आनंदित रहता है। और दूसरा कौन खुश रह सकता है, परमहंस, जो भगवान का परम भक्त होता है ना, क्योंकि उसे ये पता होता है कि इस संसार का कोई भी भौतिक कष्ट मुझे दुखी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बाकी बीच में जितने भी हैं वो इस संसार में दुखी होते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संसार में आनंद नहीं, मतलब वो कोशिश करते हैं आनंद प्राप्त करने का लेकिन उनको इस संसार में आनंद नहीं मिलता है, परंतु वो फिर भी इस संसार में उसको आनंद नहीं मिल रहा भौतिक वस्तुओं से, लेकिन वो फिर भी मजबूरी है उसकी कि इन्हीं संसारी वस्तुओं के द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वो उन वस्तुओं को छोड़ भी नहीं पा रहा है और वो है ना उन से आनंदित भी नहीं हो रहा है। वो सोचता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी कभी ना कभी जीत हो जाएगी और इन भौतिक वस्तुओं से मुझे आनंद आना शुरू हो जाएगा। जब तक भौतिक आनंद को वो पूरी तरह से फील नहीं करता, रियलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक वस्तुओं में कंप्लीट आनंद है ही नहीं, और जब तक उसको ये रियलाइज नहीं हो जाता है कि भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं है बल्कि वो तो सदैव से मेरे लिए दुखों का कारण बनते हैं, जब तक आनंद ये बात को वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता है तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकता है। बहुत ही सुंदर हमारे पास उदाहरण है बिल्व मंगल ठाकुर का। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर के विषय में हम जानते हैं कि पहले वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उसकी थी चिंतामणि, तो फिर है ना एक दिन उसके पिता की डेथ हो गई, किसी तरह से मुश्किल से वो चिंतामणि समझ रही थी कि शायद आज नहीं आएगा, लेकिन एक लाश के द्वारा जो कि समुद्र में तैर रही थी उसके ऊपर वो चढ़ के एक सांप जो कि उसकी खिड़की पर लटक रहा था उससे उसके सहारे चढ़कर वो चिंतामणि के पास आया। तो चिंतामणि ने उसे बहुत समझाया धिक्कारा कि तुम आज भी आए हो इस हाड़ मास के शरीर के अंदर। तुम्हारा इतना आकर्षण है, यदि इतना आकर्षण तुमने भगवान के साथ निर्माण किया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। ये तुम्हारा धिक्कार है ऐसे जीवन पर कि तुमने मेरे लिए ये सब किया। तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वृंदावन चले जाओ और वहां पर जाके भगवान की भक्ति करो और उनके लिए प्रेम अपना निर्माण करो। तब बिल्वा मंगल ठाकुर को यह रियलाइज हो गया कि वाकई मुझे भक्ति करनी चाहिए भगवान की, और मैं कितना अपना समय जाया किया और इसके एक वेश्या के प्रति मैंने इतना आकर्षण उत्पन्न किया। जब उसे रियलाइज हो भी गया लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक सूक्ष्म इच्छा बाकी रह गई कि भौतिक वस्तुओं से भी या भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी संभव है। तो फिर आगे चलकर वो फिर से, क्योंकि हृदय के अंदर इच्छा बाकी थी ना, तो फिर से वो एक व्यापारी के घर पे गया जो भक्त था, भक्त के घर पे गया और उसकी पत्नी की ओर आकर्षित हो गया। उस भक्त ने कहा अपनी पत्नी को कि ये हमारे अतिथि हैं, इनका स्वागत करो, इनकी सेवा करो। पत्नी ने कहा भी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हवस भरी दृष्टि से मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी उस भक्त ने कहा नहीं, ये तो भगवान के भक्त हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन उसी समय बिल्वा मंगल ठाकुर को यह रियलाइज हुआ, भगवान ने उसे हृदय से ये बताया कि देखो तुम भले कितना ही भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाओ, इससे आनंदित नहीं हो सकते हो। तभी बिल्वा मंगल ठाकुर ने उसकी पत्नी को बोला कि मुझे आपके बालों के दो पिन दे दो और उन पिनों से, जो भगवान हेयर पिन होते हैं उनसे, उसने बिल्वा मंगल ठाकुर ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया कि यही तो हवस का कारण बन रही है जो मेरी और कृष्ण की प्रीति में बाधा बन रही है। नेत्रों से यदि मैं भौतिक वस्तुओं को देखूंगा नहीं तो फिर मेरी कृष्ण के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बनी रहेगी और भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होगा। और इन नेत्रहीन नेत्रों से, यानी हृदय के नेत्रों से फिर बिल्वा मंगल ठाकुर ने भगवान, क्योंकि अब उसे भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं आ रहा था, जब उसे ये रियलाइज हो गया कि किसी भी भौतिक वस्तु में कोई आनंद नहीं है, फिर उसे भगवान के दर्शन हुए। मतलब पहले एक बार गिर गया वो भक्ति से, लेकिन फिर से भगवान ने उसे किसी न किसी तरीके से उसे ये रियलाइज कराया कि भगवान के चरणों की भक्ति में जो आनंद है, भौतिक वस्तुओं में ऐसा आनंद नहीं, भौतिक वस्तुओं में सिवाय दुख के और कुछ नहीं। जैसे एक व्यक्ति हो, अगर कोई आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, सेवा कर रहा है और फिर उसको मटेरियल लाइफ में बहुत ऐसा लग रहा है, आकर्षण दिखाई देता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं खामखा ब्रह्मचारी बन के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। देखो मेरे दोस्त थे, पहले मेरे साथ ही पढ़ते थे और वो इतना अब अमीर हो गए हैं, इतना बड़ा उनका बंगला है, गाड़ी है, अच्छी लाइफ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कंपनी में, इतना अच्छा, इतनी अच्छी उनकी अर्निंग हो रही है। तो फिर क्या करते हैं वो अपनी इस जो भक्ति की लाइफ है उसको छोड़ देते हैं और फिर वो भौतिक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान उनके लिए पूरा ना अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है, वो भी प्राप्त करते हैं, वो बहुत अच्छा भौतिक सुख भी उनको मिल जाता है और अच्छी कंपनी में अच्छी अर्निंग भी होने लगी होती है, शादी भी कर लेते हैं, बीवी बच्चे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर प्राप्त करने के बाद फिर उसे रियलाइज होता है कि भले ही मैंने सब कुछ प्राप्त किया लेकिन मेरे दुखों की समाप्ति नहीं हुई, आनंद तो नहीं आ रहा है ना। उसे वापिस से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को भोगना पड़ता है। अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक व्यक्ति भी भोग रहा है, लेकिन जो भक्त है, जो साधु है, उसे भी ये जो कि पतन हो गया उससे भी यही भोगना, लेकिन क्योंकि उसे ये विश्वास हो गया है कि अब भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं है तो वो उन वस्तुओं की ओर आकर्षण समाप्त हो जाता है। अब क्योंकि उसको ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि आनंद इन भौतिक वस्तुओं में नहीं है, जीन्स पेंट पार्टीज ये भौतिक जितने भी आसाइशें हैं उनमें आनंद नहीं है, ये तो केवल भौतिक दृष्टि से आनंद में लग रहा है। तो फिर उसको ये पता चल जाता है कि वास्तविक आनंद केवल भक्ति में उसे प्राप्त होगा, फिर वो है ना भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल निरासक्त हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यही आनंद उसके दुख का कारण है। उसको ज्ञान हो जाता है, वास्तव में अज्ञानता से कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। जब तक जीव को पूरा ज्ञान नहीं हो जाता कि भौतिक वस्तुएं मेरे दुख का कारण है, तब तक वो उनसे अपना आकर्षण समाप्त नहीं करता है। और जिसको एक बार पता चल जाता है कि भौतिक वस्तुएं दुख का कारण, तो भक्ति के लिए भौतिक आनंद में आनंदित होना संभव नहीं है। भक्ति चाहे कितनी भी कोशिश करे, वो भौतिक आनंद जब उसको ये प्राप्त हो जाएगा ना, वो कर ही नहीं सकता उसमें एंजॉय। जैसे सुअर होता है ना, वो कहाँ रहता है, गटर में रहता है, गटर में रहता है और मल खाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होता है। लेकिन एक मनुष्य के लिए क्या ये संभव है कि अगर वो गटर में गिर भी जाएगा और वो कोशिश करे कि मैं यहाँ पर, चलो ठीक है अब गिर ही गया हूँ तो मजा कर रहा हूँ, आनंदित होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो पता है उसको कि इसमें आनंद नहीं है, कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि वो सुअर नहीं है, वो मनुष्य है। उसी प्रकार से एक भक्त, भले ही वो थोड़ी समय के लिए ही भक्ति में आया होता है और रियल जो भक्ति का टेस्ट होता है, उसकी केवल वन ड्रॉप का एक्सपीरियंस उसको होता है, सिर्फ थोड़ा सा अनुभव होता है, तो भी अब वो भौतिक वस्तुओं में पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता होता है कि ये गटर है और मेरे आनंद प्राप्त करने का स्थान नहीं है। जब भी भक्त भौतिक जगत में आता है और प्रयास करता भी है वो आनंद देने का, लेकिन भी उसे दुखदायक लगता है। और भगवान एक योजना करते हैं, भगवान भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं, भगवान अपने भक्त को सदैव अपने संरक्षण में रहते हैं, वो आपको इस भौतिक जगत में एंजॉय करने में और भी दुख दिखाते हैं, ऐसा मतलब ऐसा दुखी कर देते हैं इस संसार को आपके लिए, कि वो भक्त जो है वो प्रताड़ित होता है और फिर से भगवान की और भी सिंसियरली और सीरियसली भक्ति करने लगते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, इंद्र को किसी शाप के कारण सुअर बनना पड़ा था, और सुअर बन गए थे इंद्र और मजे से सुअर की लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। ब्रह्मा जी आए और उनसे कहा कि अब आपका समय समाप्त हो गया है, चलिए अब वापस से इंद्रासन संभालिए। तो उस समय इंद्र क्योंकि सुअर की योनि में थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एंजॉय नहीं, मुझे इंद्रासन में नहीं जाना है, मुझे यहीं पर आनंद प्राप्त हो रहा है। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति को कोई भी जन्म मिल जाता है तो वो ये समझता है कि मैं ही सबसे ज्यादा आनंदित हूँ। उसी तरह मनुष्य भी सोच रहा है कि इन भौतिक वस्तुओं में जो कि इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करके मैं आनंदित हो रहा हूँ, जिस तरह से सुअर सोच रहा है कि मल खा के मैं आनंदित हो रहा हूँ। तो इंद्र ने जो कि सुअर के फॉर्म में थे, ब्रह्मा जी को बोला कि नहीं मैं नहीं चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनका फेस देखकर मुझे इतना आनंद आ रहा है, मेरी पत्नी मेरा कितना ख्याल करती है, सुबह सुबह गर्मा गर्म आना मल मेरे लिए लेकर आता है प्लेट में भर के, और हम सब मिलकर उसे एंजॉय करते हैं, अब मैं नहीं चल रहा हूँ, मुझे नहीं चलना है स्वर्ग में। तो फिर है ना ब्रह्मा जी इतना परेशान हो गए कि अब इसका क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के आदेश से उनके सारे बच्चों को मार दिया, उसकी पत्नी का है ना जैसे धनुष बाण उठाया और सबको समाप्त कर दिया। तो वो बहुत रोने लगा, दुखदायक, बोला यही मेरे सुख का कारण थे और आज इनके कारण मुझे दुख हो रहा है, ये नहीं है, अब मैं अकेला हो गया हूँ संसार में, मेरा कुछ नहीं, आप मेरे लिए कुछ करो, मैं कहाँ चलूं, कहाँ पर जाके मुझे आनंद प्राप्त होगा। तब उसे ब्रह्मा जी याद कराते कि आपके आनंद की ये वास्तविक स्थान नहीं है, आप चलिए और भगवान की भक्ति की इंद्रासन स्वीकार कीजिए, वही आपकी वास्तविक स्थिति है। उसी प्रकार कोई भी जीव यदि भगवान की भक्ति को छोड़कर भौतिक जीवन में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो भगवान दोबारा उसे अपनी भक्ति की ओर लेकर आने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं और भगवान कंप्लीट अरेंजमेंट करते हैं कि किस तरह से उसे दोबारा से अपनी भक्ति में लेकर आओ। वो भगवान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। एक बहुत ही ग्रेटेस्ट डिवोटी रंगनाथ मंदिर में भगवान की भक्ति करते थे, मतलब विग्रह सेवा भी करते थे, उन्होंने शादी भी नहीं की थी, ब्रह्मचर्य थे और बहुत ही सुंदर तुलसी का उन्होंने गार्डन बनाया था, वहां पर सेवा करते थे और भगवान की सेवा करते थे। एक दिन ना, क्योंकि सबको पता था कि ये कितने शुद्ध भक्त हैं और बहुत ही इनोसेंट थे, एक दिन उनके ना भाग में जो तुलसी का उन्होंने बाग बनाया, तो बहुत ही सुंदर एक कन्या आई लड़की, और बाग में उसका नाम था देव देवी। तो वो वहां पर आई और उसने देखा वहां पर आराम कर रही थी थकी, तो उसने कुछ बोला नहीं, और जो विप्र नारायण था वो अपने तुलसी महारानी की सेवा में लगा हुआ था, और उस देव देवी की बेटी जो सॉरी एक बहन थी उसने उसको बताया था कि ये विप्र नारायण जो है वो बहुत ही ग्रेट डिवोटी है, अगर तुम उसको भक्ति के रास्ते से हटाकर अपने मोह के जाल में फंसा सकती हो तो मैं तुम्हारा मतलब चैलेंज किया था उसको कि क्या तुम ऐसा करके दिखाओ फिर तुम्हारी बात मैं मानूंगी, जो तुम मुझे कहो कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। अब ना उसने क्या किया कि चलो ठीक है, उसने देखा वो मेरी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, तो फिर एक प्लान उसने सोचा अपने हृदय में और विप्र नारायण को बोला कि आप कितने शुद्ध भक्त हो भगवान के, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए, मैं भी आपके साथ रहकर भक्त के साथ रहकर मुझे भी भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। तो क्योंकि विप्र नारायण बहुत ही इनोसेंट थे, उसने कहा ठीक है तुम भी तुलसी महारानी की सेवा कर सकती हो, बाद में करो, और वो भी बाग में भगवान की तुलसी महारानी की सेवा करती थी। और 6 दिन के बाद एक दिन बहुत तेज बारिश आई, वो बहुत ही सेवा कर रही थी, दिल से सेवा कर रही थी, मतलब विप्र नारायण को कभी महसूस भी नहीं हुआ कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। और 6 दिन के बाद इतनी तेज बारिश आई वहां पर, वो भीग गई, और इस तरह से विप्र नारायण ने उसको बोला कि क्योंकि वो रूम में रहता था, सामने एक कुटिया बनी हुई थी, तो उसने बोला आप अंदर आ जाओ, आप बहुत भीग गई हो, आपको ना बुखार हो जाएगा। तो वो रूम में आई और विप्र नारायण ने उसको बोला कि आप चेंज कर लो क्योंकि सर्दी में आप सारी आपकी साड़ी भी भीग गई है। तो उसने चेंज किया और फिर विप्र नारायण को ऐसी बातों में बोला कि आप कितने अच्छे भगवान के शुद्ध भक्त हो, आप सदैव सेवा करते रहते हो, कभी भी आराम नहीं करते हो, मेरे हृदय से इच्छा है कि मैं आपकी कोई सेवा करूं, मेरा मन कर रहा है कि क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे हो मैं आपको मसाज करना चाहती हूं, तो मुझे आप शुद्ध भक्त हो मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करो ताकि भगवान, क्योंकि भक्तों की सेवा से अधिक प्रसन्न होते हैं। तो विप्र नारायण क्योंकि बहुत इनोसेंट था, उन्होंने बोला ठीक है आप ना करिए भले। तो फिर इस तरह अब जब उन्होंने उसको मसाज किया तो उसके हृदय में थोड़ी सी काम इच्छा उत्पन्न हुई, और जब देखा देव देवी ने कि अब ये काम इच्छा इसके अंदर उत्पन्न हो गई है, तो फिर वो क्या किया उसने, वो चली गई उसको छोड़कर अपने घर में और दरवाजा बंद करके बैठ गई और अपनी बहन को बताया देखो आ रहा है मेरे पीछे पीछे जिसको तुम शुद्ध भक्त कह रही थी। और फिर वो विप्र नारायण बहुत रो रहा था, गिर गिरा रहा था, खोलो दरवाजा मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और पिंडर जब ऐसा हुआ तो क्योंकि विप्र नारायण भगवान के शुद्ध भक्त थे लेकिन अब किसी तरह से भौतिक अट्रैक्शन में आ गए थे, फिर लक्ष्मी महारानी जो कि वो रंगनाथ मंदिर में सेवा करते, तो लक्ष्मी नारायण ने नारायण भगवान को बोला कि ये क्या कर रहे हो अपने भक्तों के साथ, कैसा खेल खेल रहे हो, वो आपके शुद्ध भक्त हैं, आपको उन पर कृपा करनी चाहिए, बल्कि आप और भी उनको ऐसा आकर्षण दिखाते क्यों हो माया का, आप कृपया ऐसा ना कीजिए और किसी तरह से उसको पतन से रोकिए, पतन से बचाइए, क्योंकि भगवान जो है उन वो अपने भक्तों के लिए अत्यधिक सुंदर प्लान जो पहले से किया होता है, उन भगवान योजना बना रहे होते हैं अपने भक्तों को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ऊपर उठाने के लिए। तो ये भगवान की एक योजना थी क्योंकि उसके हृदय में कहीं काम इच्छा की थोड़ी सी रंच मात्र भी इच्छा रह गई थी, फिर वो भक्ति में अधिक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी काम इच्छा कंप्लीटली समाप्त नहीं हो जाती। तो अब वो बहुत ही गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। तो दूसरे दिन क्या हुआ, भगवान की कृपा से और भगवान की योजना से एक व्यक्ति देवदेवी के घर पे आया और रंगनाथ जी का जो पानी पीने का सोने का लोटा था ना, वो उसको दिया और कहा कि ये विप्र नारायण ने दिया है आपके लिए उपहार के तौर पर। तो देव देवी प्रसन्न हो गई कि अभी तक वो मेरे लिए इतना कर रहा है, उसकी इतनी तीव्र इच्छा है मुझसे मिलने की, मुझे गिफ्ट भेज रहा है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, एक ना उनके घर पे, देव देवी के घर पे एक दासी थी, उसने जाकर मेन पुजारी को बता दिया कि विप्र नारायण ने एक भगवान का जो पानी पीने का सोने का लोटा है वो देव देवी के घर पे भेजा है। अब पुजारी ने राजा को कंप्लेन की, राजा ने तलाशी ली तो उसे मिल गया। तो देव देवी ने साफ बता दिया कि ये तो मुझे विप्र नारायण ने दिया। विप्र नारायण को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया और उसको बहुत कष्ट प्राप्त बहुत कष्ट मिला। और इस तरह से कष्ट जब मिल रहा था तब लक्ष्मी महारानी ने देखा, प्रभु ये कैसी निष्ठुरता है, मैं आपको बोल रही थी कि इसके कष्टों को दूर करो, आपने तो इसको और भी उल्टा और भी ज्यादा कष्टों में इसको डाल दिया है। देखो क्या हालत कर दी आपने अपने भक्त की, आपको संभालना चाहिए था उसको। तो फिर ना नारायण जी तो अपने उसी ना इटरनल स्वभाव में मुस्कुरा रहे थे और बताना चाह रहे थे कि आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, मेरा भक्त सदैव मेरे संरक्षण में होता है। ये थोड़ा सा प्रताड़ित मैं करता हूँ, अपने भक्तों को दुख देता हूँ ताकि उसे ये रियलाइज हो जाए कि भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं है। और इस तरह से विप्र नारायण ने फिर जब प्रताड़ित किया गया तो उसको बहुत रियलाइज हुआ कि वाकई में जब मैं भगवान की भक्ति में था तो कितना आनंद, थोड़े से भौतिक सुख के कारण मेरा सब मेरा इतना सम्मान, मेरा संतोष, मेरा आनंद, वो उसको वही वाले दिन याद आ रहे थे जब कुछ भी उसको नहीं चाहिए था, कुछ उसके पास था नहीं, सदैव भगवान की भक्ति करता था, सेवा करता था, बहुत याद कर रहा था उन दिनों को, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आप, ये नहीं कह रहा था मुझे छोड़ो छुड़ाओ, बोला आपने बहुत कम सजा दी है, मुझे बहुत ज्यादा सजा देनी चाहिए थी, मुझे आपने इतना, फिर भी आपने इतना मेरे ऊपर कृपा की है, मेरे जैसे को तो है ना बहुत ज्यादा तीव्र सजाएं देनी चाहिए थी, दुख ज्यादा देना चाहिए था। बहुत ऐसे गिड़गिड़ा कर भगवान के साथ बातें कर रहा था। और उसी रात को जो राजा था उसके स्वप्न में नारायण भगवान आए और उनसे कहा कि छोड़ दो इसको, इसको अब और सजा देने की आवश्यकता नहीं है, ये विप्र नारायण का कोई अपराध था जिसके कारण मैंने इसको ये सजा मिली है, अब उसका वो अपराध दूर हो गया है और इसके हृदय से वो काम इच्छा समाप्त हो गई है, अब आप इसको छोड़ दीजिए और ये फिर से पुनः अब वो भक्ति करेगा ना जो, तो उसमें कोई भी आसक्ति नहीं आएगी क्योंकि वो चख चुका ना उस भौतिक आनंद का, थोड़ा सा आनंद लेने का टेस्ट के बारे में उसने सोचा भी तो उसे केवल कष्ट आए। उसी प्रकार से जब कोई भक्त भक्ति से गिरता है तो भगवान किसी न किसी तरह से योजना बनाते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं और उसे पुनः भक्ति में लेकर आ जाते हैं। यानी कि उसका गिरना वैसा नहीं है जैसे वो साधारण नहीं बन सकता, अब क्योंकि वो भक्त की स्टेज पर आ गया है तो सदैव भगवान की संरक्षण में रहता है। और श्रील प्रभुपाद जी अंत में अत्यंत सुंदर रीति समझाते हैं कि शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय होती है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। फिर क्योंकि जब एक बार उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है ना, फिर वो चाहकर भी भौतिक भोग की ओर आकर्षण नहीं होता, उसको अच्छा ही लगता है, उसको केवल भक्ति में ही आनंद आने लगता है और प्रगतिशील भक्त की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो प्रगति करता है, अगर कुछ दुख मिलते हैं उसके बाद वापिस से वो भक्ति में आ जाता है, इस तरह से और भी उसकी प्रगति हो रही है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता। और इस तरह से जैसे जैसे उसकी शुद्ध भक्ति प्योर होती जाएगी, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति खत्म हो जाती है, फिर उसके हृदय में केवल भगवान के चरणों का स्मरण होता है, भले ही तीनों लोगों का ऐश्वर्य उसे क्यों न दिया जाए। फिर क्योंकि भौतिक आसक्ति भौतिक ऐश्वर्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्ति की स्टेज पर आ जाती है। लेकिन हम थोड़ी सी भी यदि भक्ति करते हैं तो भगवान सदैव अरेंजमेंट करते हैं हमें और भी आगे उन्नत करने। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सोचना चाहिए कि चलो ठीक है भगवान तो वैसे अरेंजमेंट करते रहेंगे और हम अपनी ओर से कोई भी प्रयास न करें। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त को सदैव प्रयास करना चाहिए कि हमें भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से बचना है। किसी भी तरह से हमें भगवान की भक्ति में उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, दृढ़ता से के साथ कार्य करना है, गुरु आदेश का पालन करना है, अपने नियमों को पूरा करना। लेकिन यदि कभी इत्तेफाकन ऐसा हो भी जाता है तो भगवान जरूर उसकी सहायता करते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमें अपनी ओर से सदैव भक्ति के नियमों का पूरा पूरा पालन करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।